चल मनोवहम गतिम पते मोक्षामि समय पाहु मोक्षद केवल ही
बन इधर इधर
बंद ना वो खाकी
कर समय साराए शुभो
इसके बाद में फिर अथ सूत्र उतार रहा सूत्र का अवतरण और उसके बाद उस सूत्र की व्याख्या और अमृत चंद्राचार्य की शैली और जयसेनाचार्य की शैली उन सब शैलियों को भी परिचय कराते हुए आपके सामने रखना चाह रहे हैं। तो पहला जो मंगलाचरण में हमने पहला पद पढ़ा नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। शुरू हुए कि नमः नमस्कार से शुरू किया, किसको नमस्कार किया? समय साराय, समय सार को नमस्कार किया है। कैसा है वो समय सार? स्वानुभूत्या चकाशते, वो अनुभव में प्रकट होता है। माने वाणी का विषय नहीं है, वाणी से समझाया जाना तो संभव है लेकिन अनुभव करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ स्वानुभूत्या चकाशते, वो शुद्धात्मा अनुभव में प्रकाशित होता है। ये अलग बात है कि अनुभव के पहले वाणी होती है, वाणी ना हो तो अनुभव के भी चांस नहीं। अगर गुरुदेव की वाणी हुई तो अनुभव का चांस मिला, अगर ये वाणी नहीं होती तो अनुभव का चांस भी नहीं मिलता। क्यों? वाणी से वस्तु को समझा जाता है, समझने के बाद अपने ज्ञान और श्रद्धा से निर्णय किया जाता है और निर्णय करने के बाद जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विकल्पों को हटाकर निर्विकल्प अनुभूति प्रकट की जाती है। इसलिए वो स्वानुभव में प्रकट होता है, अनुभूति में प्रकट होता है। वो भी दूसरे की अनुभूति में मेरा आत्मा नहीं प्रकट होता है, मेरा आत्मा स्वानुभूति निज की अनुभूति में प्रकट होता है। बहुत बड़ी घोषणा कर दी अमृत चंद्राचार्य ने कि मुझे अनुभूति हुई है कि नहीं, ये मैं बताऊंगा तुम नहीं बताओगे। क्या कह रहे? डॉक्टर को हम अपनी तकलीफ बता सकते और वो हमारी तकलीफ की दवा दे सकता है लेकिन हमारा दर्द मिटा के नहीं, ये डॉक्टर नहीं सर्टिफिकेट दे सकता, ये मैं दूंगा। क्यों? क्योंकि दर्द का अनुभव मुझे होता है ना कि डॉक्टर को। डॉक्टर तो सुन करके डायग्नोज करके उसकी दवा भर दे देता है, मेरी अनुभूति में दुख अभी मौजूद है कि नहीं है ये मैं अपनी अनुभूति से बताऊंगा। इसलिए पता लगता है कि मेरे आत्मा की अनुभूति हुई है कि नहीं, मैं ज्ञानी हुआ हूं कि नहीं, इसके लिए हमें कोई की अपेक्षा नहीं। हमें अपेक्षा है अपनी परिणति आत्मसन्मुख होकर हमारा स्वयं का वेदन कर रही है कि नहीं, बस इसकी जरूरत है। अन्य की अपेक्षा रखने वालों को आत्मानुभूति होना संभव नहीं। क्या कह रहे? बिल्कुल एक एक बात बताते चलते हैं, आप समझना अच्छी तरह से। तो स्वानुभूत्या चकाशते, मैं शुद्धात्मा को नमस्कार करता हूँ जो अनुभव में प्रकट होता है। जो अनुभव में प्रकट होता है तो उस शुद्धात्मा का लक्षण क्या है? तो एक लक्षण तो शुद्धात्मा का है भावाय, भाव लक्षण। भाव माने उसकी सत्ता, जो वस्तु की सत्ता को सिद्ध करे वो लक्षण भाव लक्षण है, उससे वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है। लेकिन सत्ता सिद्ध होने से भेद ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? भेद ज्ञान के लिए सत्ता में जो अपना विशेष स्वरूप लक्षण है उस लक्षण के द्वारा ही भेद ज्ञान होता है। तो दूसरा और वहां पर अनुभूति में शब्द डाला, भावाय में भाव रूप समय सार को नमस्कार करता हूँ, और दूसरी बात वो भाव कैसा है? चित्त स्वभाव है, चैतन्यमय है। पर चैतन्यमय जब कहा तो इसमें भेद ज्ञान कैसा हो गया? पांच द्रव्य चैतन्यमय नहीं है, एक बात भी अलग हो गए। अनंत जीव चैतन्यमय हैं, पर उनकी चेतना मेरा अनुभव नहीं कर सकती, इसलिए वे भी मेरे से न्यारे हो गए। मेरी ही चेतना मेरा अनुभव कर सकती है, लेकिन वह चेतना भी किसी के संग में नहीं होना चाहिए। विकल्पों के संग में हो, राग के संग में हो, संकल्प विकल्प चल रहे हो, तो वो चेतना भी अपना अनुभव करने में असमर्थ, आत्मानुभूति करने में असमर्थ है। इसलिए वो तो आत्मा जब अनुभव में आता है तो चित्त स्वभाव चैतन्यमय अनुभव में आता है, और वो अनुभूति में जो पर्याय की चेतना होती है वो ऐसी तन्मय हो जाती है कि पर्याय पर्याय को भूल जाती है, और द्रव्य स्वभाव में तन्मय होकर मैं ही द्रव्य हूँ ऐसी अनुभूति उसको होने लगती है। एकत्व की अनुभूति में सच्ची अनुभूति प्रकट होती है। तो स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय, यानी भावाय शब्द में द्रव्य स्वभाव की घोषणा की, चित्त स्वभाव शब्द में गुण उसका लक्षण की घोषणा की, और सर्व भावांतर छिदे उसकी पर्याय की सामर्थ्य भी बताई कि कितनी है पर्याय की सामर्थ्य, कि जिसमें सर्व भाव गर्वित हो जाएं, झलक जाएं, ऐसी पर्याय की सामर्थ है। ज्ञान पर्याय की सामर्थ्य में समस्त भाव झलकते हैं। जगत के जितने भी पदार्थ सत्तावान है वे केवल ज्ञान में झलकते हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हों, ये ज्ञेयों का स्वभाव है, और ज्ञान का स्वभाव ये है कि वो उन्हें ज्यों का त्यों झलकाए, ये ज्ञान का स्वभाव है। और वे प्रतिबिंबित होते हैं इसलिए ज्ञान में पराधीनता नहीं आती, और ज्ञान उन्हें झलकाता है इसलिए ज्ञान विकृत नहीं हो जाता है। ज्ञान तो निर्मल था, निर्मल है और निर्मल रहेगा, और पर पदार्थों को झलकाता था, झलकाता है और झलकाता सही मायने ना, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। उस ज्ञान स्वभाव में सर्व भाव अंतर छिदे, अंतरंग अंतर छिदे माने ज्ञान में ऐसे झलकते हैं, माने ज्ञान में घुस गए हो, ज्ञान में बैठ गए हो, ज्ञान में प्रवेश कर गए हो, ज्ञान में कीलित हो गए हो, ज्ञान के अंदर लिखित हो गए हो, इस तरीके की व्याख्या किए प्रवचन सार में अमृत चंद्राचार्य ने 200 नंबर की गाथा की टीका में। और ये शब्द भी डाला है कि वो जो गे ज्ञायक संबंध है वो अनिवार्य है, ये शब्द लिखा। क्या शब्द लिखा? अनिवार्य, यानी जगत में कोई सत्ता गेयों को ज्ञान से नहीं निकाल सकती, लेकिन एक सत्ता जरूर है जिसमें गेय कभी प्रवेश नहीं कर सकते, वो है अपनी स्वरूप सत्ता। जब अपन अपना स्वरूप को देखें तो किसी भी गेय का मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं है, लेकिन झलकने वाली अपेक्षा को देखें, ज्ञान में गे झलकते हैं ये बात देखें तो हाँ बराबर गे झलकता है। गे झलकता है कि गे का आकार झलकता है? कौन झलकता है? गे आकार झलकता है। देखो ऐसा भी अपन कहेंगे ना कि गे आकार झलकता है, तो मैं पूछूंगा गे आकार झलकता है तो उसके लिए गे नाम क्यों दिया, गे आकार नाम क्यों दिया? इसलिए दिया कि वो ज्ञान में झलकन जो होती है भले ज्ञान का परिणमन है, तथापि उसका जो आकार बना है वो वैसा ही है जैसा जगत में वस्तु विद्यमान। क्या कहा? केवल ज्ञानी के ज्ञान में गधे का आकार नहीं झलकता, गे आकार नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? केवल ज्ञानी के ज्ञान में गधे का सिंह गे आकार क्यों नहीं बनता? क्योंकि गधे के सिंह की सत्ता जिसकी सत्ता नहीं है वो झलकने का प्रश्न नहीं है, और जिसकी सत्ता है वो ना झलके ये भी प्रश्न उठ सकता, क्योंकि ज्ञान का ऐसा अनोखा सुपर प्रकाशक स्वभाव है। स्व को भी स्वरूप प्रकाशित करता है, पर को पर रूप प्रकाशित करता है। ऐसा मंगलाचरण में अमृत चंद्राचार्य ने जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण में अपने स्वरूप को अनुभव करते हुए निश्चय की प्रमुखता वाला मंगलाचरण रखा। कुंद कुंदाचार्य ने तो सिद्धों को याद किया, सिद्धों को याद करने में व्यवहार हो गया क्या ये ख्याल में, क्योंकि सिद्ध परात्मा है, भले परमात्मा है पर परात्मा है, और जिस स्वानुभूति में आने वाला जो शुद्धात्मा है वो परात्मा नहीं है, वो निजात्मा है। निजात्मा को नमस्कार करना निश्चय है और परात्मा को नमस्कार करना व्यवहार, गजब है। गुरु तो गुरु रहे, चेला तो उससे और भी ऐसा शब्द कहा जाता है ना, तो गुरु तो गुड़ रहा और चेला शक्कर हो गया, ऐसी बात। यानी उन्होंने नमस्कार किया सिद्ध भगवंतों को, और ये नमस्कार कर रहे हैं निःसिद्धात्मा को, अपना निःशुद्ध स्वभाव को। तो ये अंतर ये है कि अमृत चंद्राचार्य की शैली ऐसी रही कि जितने गाथा सूत्र हैं उनमें अगर उन्होंने गाथा सूत्र को नास्ति से शुरू किया अथवा व्यवहार से शुरू किया तो अमृत चंद्राचार्य ने टीका निश्चय से चालू की, सही माया, और निश्चय से प्रमुख की उसकी गाथा टीका की व्याख्या, ये उन्होंने शैली अपनाई। और इस शैली के कारण जब उन्होंने सर्व सिद्धों को नमस्कार किया था तो इन्होंने कहा वो सर्व सिद्ध जो बने हैं वे इस निःशुद्धात्मा के आश्रय से बने हैं, ले मैं उस निःशुद्धात्मा को नमस्कार करता हूं। पहली बात इसमें अब एक गाथा हो गई, मैं इसलिए जल्दी चलूंगा कि मुझे समय की मर्यादा भी ध्यान रखना है, हैं? और विषय को भी छोड़ना नहीं है, विषय का हर बिंदु ख्याल में आ जाए ये बात हम पूरे प्रयास करेंगे। तो दूसरी गाथा आती है इसके तुरंत बाद, समस्त कहना चाहिए अपने निजात्मा को नमस्कार कर लिया, उसमें द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा कर दी, भावाय द्रव्य का प्रतीक है, द्रव्य का लक्षण है, और चित्त स्वभाव गुण का लक्षण है, गुण रूप है, और सर्वभाव अंतर छिदे ये पर्याय का स्वभाव,
पूर्णता
पर्याय में भी पूर्णता, गुणों में भी पूर्णता, द्रव्य स्वभाव तो परिपूर्ण है ही, ऐसी ये चर्चा चल रही है। मंगलाचरण हुआ जिसके मंगलाचरण में इतनी गहरी बात आई हो, अरे इसकी व्याख्या जब अपने पंडित जय इन्होंने क्या नाम जयचंद जी छाबड़ा ने बनाई तो उन्होंने तो एक एक का शब्द लिखने का कारण बताया कि शुद्धात्मा को नमस्कार किया, वहां भावाय शब्द क्यों डाला कि जगत में आत्मा के अभाव मानने वाले नास्तिकवादी बहुत है, इसलिए उनका खंडन करने को कहा कि आत्मा की नास्ति न थी न है और न कभी होगी, और सभी आत्मा अपने स्वरूप से अनादि हैं, अनंत हैं, अनादि अनंत रहेंगे, और उनकी सत्ता को कोई पैदा करने वाला नहीं, उनकी सत्ता को कोई नाश करने वाला नहीं, और उनकी सत्ता का कोई अभाव कर सकता नहीं, ऐसी सत्ता है। तो द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता की घोषणा कर दी, शुद्ध स्वभाव की घोषणा कर दी, निर्विकल्प अनुभूति की घोषणा कर दी, और निश्चय नमस्कार कर दिया। इतना पहली गाथा में किया। अब दूसरी गाथा में जिनवाणी, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान तो देख उनके द्रव्य गुण पर्याय का चिंतन करके भी हम अपना तत्व ज्ञान प्रकट कर सकते हैं, लेकिन असंख्याते जीव तो कैसे तत्व ज्ञान करते हैं, जो उनकी दिव्य ध्वनि हुई है, जो जिनवाणी है उससे अपना भला करते हैं। आज भी हम जो भला कर रहे, भला हो रहा है या तत्व के अभ्यास में लगे हुए हैं जिनवाणी के माध्यम से लगे, वो जिनवाणी की परंपरा कुंद कुंद आदि आचार्यों से आई, अमृत चंद्राचार्य के पास आई, जयसेन आचार्य के पास आई, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के पास आई, और उन्हीं के परंपरावर्ती विद्वानों के पास आकर गुरुदेव के सामने आए, संगायन, और गुरुदेव ने वो बात कही जो आचार्य अमृत चंद्र ने कही, वो बात कही जो आचार्य कुंद कुंद ने कही, और कुंद कुंद से पूछा आपने क्या कहा कि हमने श्रुत केवली ने कही वो कही, और श्रुत केवली से पूछा आपने क्या कही कि केवली ने जो कही वो कही, और केवली से पूछा आपने ऐसी क्यों कही कि हमने क्या कही वस्तु स्वरूप ऐसा है, हमने क्या कही वस्तु स्वरूप ऐसा है, हम तो कोई वस्तु स्वरूप में कुछ कर सकते हैं नहीं। अनंत वीर्यशाली भले हो लेकिन वो अनंत वीर खुद के लिए काम का है, घर में गड़बड़ करने के काम कोई आ सकता।
जतन भाई
देखिए देखिए आगे विचार कीजिए, तो मंगलाचरण करते हैं जिनवाणी का मंगलाचरण। अनंत धर्मनास्तत्वम्, तत्व जितने भी है जगत में आत्म तत्व भी अनंत धर्मात्मा कैसा है, अनंत धर्मना जिसमें अनंत धर्म पाए जाते हैं ऐसा तत्व है। और वो तत्व चाहे जीव तत्व हो या कहना चाहिए पुद्गलादि जो अन्य द्रव्य हैं, वे भी सब अनंत धर्मात्मक हैं। जगत में सर्व वस्तुएं अनंत धर्मात्मक हैं। अनंत धर्मनाश तत्वम, तो निजात्मा भी अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मनाश तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, ये अनंत धर्मात्मक तत्व को जो जिनवाणी पृथक दिखाती है, अन्य द्रव्यों से पृथक दिखाती है, चेतन द्रव्यों से भी अचेतन द्रव्यों से भी पृथक दिखाती है, हैं? और अपने को अनंत धर्म रूप दिखाती है, ऐसे अनंत धर्मणः तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, ऐसी अनेकांतमयी मूर्ति, वो अनेकांत की मूर्ति है माने अनंत धर्मात्मक एक मूर्ति है, नित्यमेव प्रकाशतम, ऐसी जिनवाणी हमें निरंतर प्रकाशित हो। तो वो जिनवाणी दो प्रकार की है, दो क्या कहें, वस्तु का स्वरूप ही तीन प्रकार का होता है। जगत में जितनी वस्तुएं हैं सब तीन प्रकार की हैं। मैं आपको कहता हूं ये सामने मोबाइल रखा है भाई, ये तीन प्रकार का, ये मोबाइल तीन प्रकार का बता दें आपको। मैंने कहा मोबाइल तो ये हो गया शब्द मोबाइल, क्या हो गया शब्द मोबाइल, और ये जो है ना ये हो गया अर्थ मोबाइल, और शब्द मोबाइल के निमित्त से अर्थ मोबाइल को जिसने जाना वो हो गया ज्ञान मोबाइल। ऐसे समय सार शुद्धात्मा, ये तो शब्द वाला शुद्धात्मा हुआ, लेकिन उसका वाचक जो अंदर विराजमान अनादि अनंत हैजन्य पर्याय से पार, गुण भेदों से पार और विकल्पों से पार, संकल्प विकल्प से रहित और एकाकार जो अनुभूति का विषय बनता है, ऐसा वह आत्मा, वो आत्मा पदार्थ तो वो है पदार्थ या अर्थ समयसार, और उसकी जो अनुभूति होती है वो है ज्ञान समयसार। कार्य ज्ञान में होता है क्योंकि सारी गड़बड़ी अनादि काल से ज्ञान में चली है, सुधार भी सब ज्ञान में होना है। वस्तु में कभी बिगाड़ हुआ नहीं, शब्दों में कभी बिगाड़ हुआ नहीं, उनमें कुछ करना नहीं, शब्द सुधारना नहीं और वस्तु में सुधारने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। केवल अपने ज्ञान को जिनागम अनुसार, जिनवाणी अनुसार, जिनेन्द्र देव और उनकी परंपरा में कथित वाणी के अनुसार अपने ज्ञान को वैसा ही वस्तु स्वरूप में निर्णय करके वैसे ही ढालना, वैसे ही जानना, उसी प्रकार मानना जैसा जिनागम में कहा गया है, तो तुम्हारा ज्ञान समय ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जिनागम में मिथ्या ज्ञान रूप निरूपण है नहीं, वस्तु के स्वरूप का निरूपण है। वो वस्तु स्वरूप को जानने वाला ज्ञान मिथ्या हो सकता नहीं, और जब तक वस्तु स्वरूप न जाने तब तक सम्यक हो सकता है। इसलिए जिनवाणी को नमस्कार किया। और अमृतचंद्राचार्य की तो ये विशेषता है, उन्होंने जितने ग्रंथ, तीन टीका ग्रंथ लिखे, दो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, तत्वार्थ सार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सब में पहले परमात्मा को नमस्कार किया, फिर दूसरा नमस्कार जिनवाणी को किया। ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं, ये उनकी विशेषता रही, सर्व आचार्यों में वो विशेषता नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें ये है कि ये जिनवाणी को नमस्कार अवश्य करते। अब आगे तीसरी गाथा आ रही, एक एक गाथा कोई कमाल की है, चाहिए तो एक एक जो श्लोक है वो कमाल का है, एक श्लोक के लिए कम से कम दो घंटे चाहिए। लेकिन अभी अपन को सुनो तो ज्यादा बारीकी में जाएं और स्थूल ही पकड़ में ना आए तो सब चला जाएगा। तो पहले स्थूल पकड़ में आना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाया जाता है, ऐसा शिक्षण का सूत्र है।
तो अभी अपन थोड़ी चर्चा उसकी स्थूल की करेंगे, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म में भी चलेंगे और वहां तक चलेंगे जहां तक सामर्थ्य होगी। समझ में नहीं, वस्तु तो बहुत सूक्ष्म है, वो तो केवल ज्ञान गोचर है, लेकिन हमारी सामर्थ्य जितनी है हम उतनी गहराई में जा सकते हैं। समुद्र बहुत गहरा है लेकिन गोताखोर उतनी गहराई में जा सकते हैं जितनी उनमें सामर्थ्य पाई जाती है। अब जरा विचार करें, अमृत चंद्राचार्य कहते जो टीका हमने बनाई उसका प्रयोजन तो सुन लो, जगत में निष्प्रयोजन कार्य नहीं होता है। क्या प्रयोजन था ये टीका बनाने का? जो टीका बनाने का प्रयोजन है वही प्रयोजन ग्रंथ की रचना का है। क्या कह रहे हैं? और वही प्रयोजन दिव्य ध्वनि का है। क्या है वो प्रयोजन? सुनो जाना, तीसरी गाथा लिखते हैं। पर परणति हेतु मोह नाम दविरत मनुभाव्या व्याप्त कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यवानुभूते। अब एक एक शब्द का विश्लेषण कर देते हैं कि जो हमारे पर्याय में जो दशा चल रही है कि मोह नाम के कर्म का अनुभव करने से मेरी पर्याय में वो मोह कर्म की अनुभूति जन्म मलिनता पैदा हो रही है। वो मलिनता कब से है? कि वो मलिनता अनादि काल से चल रही है और वो मलिनता आज भी पर्याय में मौजूद है। यदि पर्याय में मलिनता न होती तो शुद्धात्मा के उपदेश की कोई जरूरत नहीं थी, अनुभव की भी जरूरत नहीं थी, पर पर्याय में मलिनता है। जो पर्याय की मलिनता को स्वीकार नहीं करते, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना, एक एक शब्द सोच समझ के बोल रहा हूं, जो पर्याय की मलिनता को स्वीकार नहीं करते वे निश्चयाभासी कभी नहीं सुधरते। जो पर्याय की मलिनता को अपना स्वभाव मानते हैं वे व्यवहाराभासी अनादि से भटक रहे और अनंत काल भटकेंगे। समझ में आएगा नहीं? तो पर्याय की अशुद्धि मोह कर्म के अनुभव के उदय से उसमें तन्मय होकर के जीव ने स्वयं पैदा की, वो मोह कर्म ने पैदा नहीं की, निमित्त बना है, लेकिन पैदा करने का अपराध अपनी बुद्धि का अपराध है, स्वप्रज्ञा अपराध है। वो अपना अपराध होने से अपनी भूल को पहले स्वीकार करो, अपनी भूल स्वीकारे तो सुधर जावे, और अपनी भूल स्वीकार न करे उसे कोई सुधार सकता चल माएंगे नहीं। तो मेरी परिणति में निरंतर मोह का अनुभव करके जो अनुभूति चल रही है और जो परपरिणति चल रही है उसका निमित्त दर्शन मोहनी कर्म का उदय है या चार्त मोहनी कर्म का उदय। अब मेरी परिणति में परम विशुद्ध दशा प्रकट है। परम विशुद्ध दशा का अर्थ है मोह का सत्यानाश हो जाए, अज्ञान का नाश हो जाए और मेरी परिणति जो स्वभाव रूप मेरा जो दशा है वो मेरी पर्याय में प्रकट हो जाए, ये प्रयोजन है। प्रयोजन हमेशा पर्याय में रहता है, प्रयोजन की सिद्धि द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होती है। क्या कहा भाई? विशुद्धि प्रकट होगी कहाँ होगी? पर्याय में होगी। तो प्रयोजन कहाँ है? पर्याय में। तो पर्याय का प्रयोजन तो तब सदै कि पर्याय की भूल पर्याय को समझ में आवे। क्या ख्याल में? अगर पर्याय पर्याय की भूल को ही स्वीकार नहीं कर रही है तो मैंने नहीं, मेरे राग है ही नहीं, तो तुम सांख्यमति जैनी हो। क्या कह रहे? अन्नमति वाले जैनी हो, जैन कुल में, जैनी तो हमने इसलिए कह दिया जैन कुल में जन्मे हो, हाँ, लेकिन सांख्यमति इसलिए कहा कि मान्यता से सांख्यमति हो। अपनी पर्याय अमृत चंद्राचार्य को स्वीकार है कि मेरी परिणति कलमाशित हो गई है। ये कौन कह रहा है? अमृत चंद्राचार्य कह रहे मेरी परिणति कलमाशित हो गई। क्यों हो गई? मोह कर्म के उदय का अनुभव करके मेरी परिणति कलमाशित हो गई, मलिन हो गई है, जबकि मलिन होना ये मेरी परिणति का स्वभाव नहीं। तो तुम निर्मल हो जाए, विशुद्ध परम विशुद्धि की दशा प्रकट हो जाए, यानी जैसी अरहंत और सिद्धों की दशा हो जाती है वैसे परम विशुद्ध दशा तो सिद्धों की कहलाती है, वैसी दशा मेरी हो जाए, इसके लिए मैं ये समय व्याख्या यानी समय सार की व्याख्या करता हूँ। और व्याख्या दो तरीके से करता हूँ, वो भी अभी टीका, जब पहली गाथा की टीका लेंगे तो उसमें से ये सारा व्याख्यान निकालेंगे। तो वो दो प्रकार की व्याख्या कैसी, एक व्याख्या शब्दों में होती है, एक व्याख्या विकल्पों में होती है, और एक व्याख्या व्याख्या अनुभव में होती है। अनुभव की व्याख्या से विशुद्धि आती है, विकल्प अगर शुभ है तो उस व्याख्या से शुभ बंद होता है, और जो वाणी की क्रिया है उससे कुछ नहीं होता है, न शुभ बंद होता है न निर्मलता होती है। वाणी तो वाणी है, वो जड़ का परिणमन है, उसमें तो कुछ तुम्हारा होने जाने वाला एक अजब बात है। क्यों, वाणी के परिणमन से अगर कुछ होता तो मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे अपन तत्वार सूत्र पढ़े तो ऐसा लिखा है कि एक बार पूरा पढ़ जाओ पाठ तो एक उपवास का फल मिलता है। तो हम टेप में भर दें और टेप को चालू कर दें, वो 10 बार पढ़ जाए और शुद्ध पढ़ जाए तो कितने उपवास का फल लगेगा? 10 उपवास का लगेगा? कैसे लगेगा? परिणामों बिना फल कहाँ से आएगा? फल तो परिणामों में होता है और उससे आता है। इसलिए मेरे परम विशुद्ध दशा हो, अभी अधूरा है अर्थ मगर पूरा करते। उसमें ये और लिखा है, शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, मेरे विशुद्धि नहीं होनी है, मेरे में अशुद्धि नहीं है, क्योंकि मैं तो शुद्ध चेतन मूर्ति हूँ, अनादि से हूँ, आज भी हूँ और अनंत काल रहने वाला हूँ। ये अशुद्धि मेरी नहीं, मेरे में होना नहीं, मेरी परिणति मलिन हुई है। कौन मलिन हुआ है? मेरी परिणति कलमाशित हुई है, मैं कलमाशित स्वरूप से नहीं हूँ, मैं तो अनादि अंत निर्मल हूँ। दो बातें स्वीकार कर ली, द्रव दृष्टि से मैं तो कैसा हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन मूर्ति हूँ और वो अनादि से हूँ, आज भी हूँ और आगे अनंत काल रहूंगा। और मेरी परिणति मोह का अनुभव करके कैसी है? मलिन है। तो कौन है मलिन? मैं हूँ मलिन के मेरी एक परिणति है मलिन? अब एक बात कहूँ, परिणति की मलिनता जब तुमने उसे मेरी कहा तो वो तुम्हारी मलिनता कहलाएगी। समझ लो आप जरा, ये ऐसा है ना, जैसे ये पत्नी हमारी है और उसने कोई गलत आचरण किया तो पति बदनाम होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा, होगा। तो परिणति मलिन कार्य करे, मोह से एकत्व बुद्धि रखे और अपने शुद्ध स्वभाव से एकत्व बुद्धि ना रखे तो वो पर्याय की मलिनता द्रव्य को भी वास्तव में बदनाम करेगी कि नहीं करेगी? तो है तो शुद्ध चेतन मूर्ति लेकिन बदनाम है अनादि से, कि राग द्वेष को कभी छोड़ नहीं रहा है। इसलिए दो दृष्टियां सामने रख दी आचार्य ने, अशुद्ध निश्चय न से देखा जाए, पर्यायार्थिक निश्चय के दो भेद होते, अशुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय और शुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय। तो अशुद्ध पर्यायार्थिक निश्चय से देखा जाए तो जो परिणति में मलिनता आई है ये जीव की ही भूल है, अज्ञानी जीव ही उसका करता है, अन्य कोई उसका करता नहीं। अब दूसरी बात कि अगर विशुद्धि आएगी तो ये जीव के ही पुरुषार्थ से आएगी, और वो पुरुषार्थ क्या होगा कि परद्रव्य से हटेगा, विकल्पों से हटेगा, गुण भेद से हटेगा, पर्याय भेद से हटेगा, संकल्प विकल्प से हटके स्वरूप में एकाग्र होगा, तन्मय होगा, और उस काल में जो अनुभूति होगी वो अनुभूति शुद्धता की प्रतीक होने से, शुद्ध रूप होने से शुद्ध नय का विषय होगी, पर शुद्ध पर्यायार्थक नय का विषय होगी। किसका नय विषय बनेगी? और चूंकि शुरुआत में वो अपूर्ण होगी तो वो नय के भी दो भेद हो जाएंगे, एक देश शुद्ध पर्यायार्थक नय और सर्व देश शुद्ध पर्यायार्थक नय। 13वें गुण स्थान में जब परिणति निर्मल होगी और परिपूर्ण कहो तो सिद्ध दशा में जब परिणति पूर्ण निर्मल होगी तब उस काल में पूर्ण शुद्ध पर्यायार्थिक नय लागू होकर आत्मा की परिणति पूर्ण विशुद्ध कहलाएगी। और द्रव्य आर्थिक नय से देखा जाए तो मैं तो परिपूर्ण ही विशुद्ध हूं, मुझे होना नहीं है, जिसे होना हो वो मेरा आलंबन ले गए, मुझे तो कोई विशुद्ध होना नहीं क्योंकि मैं तो विशुद्ध ही हूं। देखो ये दोनों बातें, मैं विशुद्ध हूं, निर्मल हूं, शुद्ध चेतन मूर्ति हूं ये बात, और मेरी पर्याय में मलिनता है ये दोनों बात करने वाली पर्याय, दोनों ही बातें पर्याय कर दी। वो द्रव्य स्वभाव तो विचारा मौन है, उसमें ये विकल्प नहीं है कि मैं शुद्ध हूँ, ये विकल्प भी पर्याय में होता है। कहाँ होता है? ये विकल्प भी पर्याय में होता है। पर्याय ही कहती है कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही त्रिकाली हूँ, मैं एक शुद्ध ममत्वहीन और ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, इसमें रहूं स्थित लीन, इसमें शीघ्र ये सब क्षय कर। ये परिणति बोलती है, ये सारा कथन परिणति में चलता है, क्योंकि सुधरना भी परिणति को है, बिगड़ी भी परिणति है, हैं? लेकिन सुधरना इतना ही है कि सुधरे हुए का आलम्बन करे तो बिगड़ सकती नहीं, समझ में आएगी नहीं, और बिगड़ी थी तो सुधरे बिना रहेगी। कितना कठिन काम है कि सरल काम है? सरल था तो इतना काल कैसे बीत गया, अनंत काल, और अभी तक नहीं हुआ,
अभी नहीं बीतेगा,
है?
अभी नहीं
बीतेगा, अब नहीं बीतेगा, ठीक है, तो वो सरल ही है, बिल्कुल सरल है, ठीक बात है। और अपना कार्य सरल है, दूसरे का कार्य कठिन है। मैं तो ये कहता हूँ, हमें अपने जेब से पैसा निकालना है, बोलो सरल है कि कठिन है? सरल, दूसरे के जेब से निकालना सरल है कि कठिन है? कुछ कलाकार ऐसे होते हैं कि दूसरे के जेब से निकालने में इतने कुशल होते हैं आयोजन में, और अपने जेब का कभी नहीं निकालते, ऐसे भी लोग होते हैं, समझदार होते ना। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं, यहाँ हमारे ज्ञान से हमें अपने वैभव का अनुभव करना है, ये कठिन काम है कि सरल काम है? ये दुर्लभ है कि सहज सुलभ? लेकिन आगम में दो तरीके के कथन आते हैं। एक कथन तो ये आता है कि ज्ञान दुर्लभ है, बोधि दुर्लभ भावना है ना, धन कण कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ। जयचंद जी पंडित जी बोले भैया वो एक अलग व्यवहार नहीं का कथन था, हम निश्चय का कथन कहते हैं। ज्ञान आपनो रूप है निश्चय दुर्लभ नाही, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहां है। तुम भाव में खोजो ही मत ज्ञान को, ज्ञान को ज्ञान में खोजो तो ज्ञान सुलभ है, सहज है, और ज्ञान को दुनिया में खोजोगे, ग्रंथ में खोजोगे तो भी ज्ञान मिलने वाला
नहीं है,
क्योंकि वहां ज्ञान है नहीं, समय सार में ज्ञान नहीं है। ये तुम्हें बोलने का अधिकार कहां से मिला? समय सार से। कहां से मिला? समय सार ने कहा रे शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं, इस हेतु से है ज्ञान शब्द अन्न और ज्ञान अन्न। कौन कहते हैं? प्रभु कहें, सर्वज्ञ भगवान कहते हैं। तो ये तीन मंगलाचरण हो गए। अभी हम गाथा शुरू करते हैं। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव दो मचल मणोभवम गदिम पत्ते बोच्छामी समय पाहड़ मृणमो शुद्ध केवली भणिदम। अब एक एक शब्द पे विचार करती। वंदितु, मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना करते हैं? वंदितु सब सिद्धे, समस्त सिद्धों की वंदना करता हूँ। तो सिद्ध सब सिद्ध माने बहुत होते हैं क्या सिद्ध? हाँ, सिद्ध एक सिद्ध अनादि अनंत कोई नहीं होता, सर्व जो है सिद्ध वे हुए हैं, अनादि से इनके होने की परंपरा चल रही है और वे अनंत हो चुके हैं और उनसे अनंत गुणे अभी होंगे, समझ में आया कि नहीं? ये परंपरा चलेगी तो मैं उन समस्त सिद्धों को, त्रिकालवर्ती सिद्धों को वंदितो नमस्कार करता हूँ। लेकिन वो वंदना जो होगी वो दो प्रकार की होगी, एक व्यवहार वंदना, एक निश्चय वंदना। शब्द से वंदना होगी वो असद्भूत व्यवहार कहलाएगा, और जो शब्द के साथ साथ उनके प्रति लगाव वाली जो रुचि विकल्प, उससे जो वंदना होगी वो अशुद्ध व्यवहार कहलाएगा, और उनकी तरफ का विकल्प छोड़ के निजात्मा के आश्रय से जो वंदना होगी वो निश्चय वंदना होगी, क्योंकि निश्चय वंदना में बंद बंधक भाव नहीं होता, वहां बंद बंधक भाव का अभाव होकर एक ही आत्मा वो ही वंदनीय है और उसकी ही परिणति उसमें लीन होके उसकी वंदना करती, ऐसी निश्चय वंदना वो परम विशुद्धि को प्रकट कराने वाली है। तो मैं नमस्कार करता हूँ वंदितो, नमस्कार करता हूँ सब सिद्धों को। वे सब सिद्ध कैसे हैं? ध्रुव हैं, अचल हैं और अनुपम गति को, तीन विशेषण। ध्रुव अचल और अनुपम गति। मैंने विचार किया कि दो विशेषण ऐसे लगते जैसे एक से हो, ध्रुव और अचल में अंतर क्या है? तो जब टीका देखी अमृत चंद्राचार्य की, तो अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं टीका में कि अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेने से परिणति ध्रुव हुई। क्या लिखा? परिणति में ध्रुवता कैसे आई? ध्रुव स्वभाव के अवलंबन से ये परिणति में ध्रुवता आई। देखो यहाँ लिखा है अमृत चंद्राचार्य के शब्द में, मैं पढ़ के सुना देता हूँ उसको। अथ प्रथमतः एव, प्रथमत एव, अब पहले से ही स्वभाव भाव भूत तया ध्रुवत्वम, जो ध्रुवपना आया है सिद्ध पर्याय में, वो स्वभाव भाव भूत माने स्वभाव में तन्मय होने के बल से पर्याय में ध्रुवपना प्रकट हो गया। वो ध्रुवपना ऐसा कि वो कभी विकारी नहीं होगी। अभी तो विकारी होती रहती थी और विकार घटता बढ़ता रहता था और ध्रुव रहती थी, अब सिद्ध दशा हुई है तो एक भी गुण में विकार होने वाला नहीं है। सादी अनंत काल तक धारा प्रवाह शुद्धता की धारा चलेगी, वो ध्रुव परिणति शायण। और वो कैसे प्रगटी? ध्रुव स्वभाव के आलम्बन से प्रगटी। और आगे लिखते हैं अचल की व्याख्या, ध्रुवत्वम अवलंब मानाम अनादि भावांतर परिवृत्ति विश्रांति वशेन अचलत्वम। अवलंब मानाम अनादि भावांतर, अनादि काल से जो भावांतर माने विकारी पर्याय हैं अथवा परद्रव्य हैं, उनका आलम्बन लेने से इस जीव के जो प्रगति है वो पर परिणति प्रगति है, निज परिणति नहीं प्रगति है। पर के अवलंबन से निज परिणति नहीं प्रगटती है, इसलिए भले पर पदार्थ ज्ञान का गेय हो लेकिन उसका आलम्बन छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? क्योंकि तुम्हें निज परिणति प्रगट कर, और पर के आश्रय से निज परिणति प्रगट नहीं होती। इसलिए ये पर परिणति जो हो रही थी, विकारी भाव जो हो रहे थे, वो पर के आलम्बन से हो रहे थे। अब उन पर का आलम्बन जो है उससे विश्रांति ले ली। क्या हो गया है? आलम्बन की विश्रांति होने से विकारी भावों की विश्रांति हो गई, और विकारी भावों की विश्रांति होने से अब चतुर्गति बंद रुक गया, तो अब नवीन गतियों में जाना नहीं होगा। तो अब ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकट करके सीधा सिद्धालय तक जाएगा, वहां एक जगह स्थिर होने के बाद अब दोबारा एक प्रदेश भी चलायमान नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? अचल बन जाएगा। तो इनमें दो बातें ख्याल में आई, एक तो ये आई कि ध्रुव शब्द आत्मा के अनंत अनुजीवी गुणों को बताता है, बेनिर्मल होते हैं तो ध्रुवता आती है, और प्रदेशत्व गुण जब निर्मल होता है तो अचलता आती है। एक बार वहां तक चलायमान भर होंगे, एक समय में वहां तक गमन करेंगे, और गमन करने के बाद वहां एक बार स्थिर होंगे। अब एक भी प्रदेश सिद्ध भगवान अनंत काल तक चलायमान, तो एक हो गई क्रियावती शक्ति का स्वभाव रूप परिणमन हो गई, समझ में आएगा नहीं, और एक भाववती शक्तियों का स्वभाव रूप परिणमन हो गई। परिपूर्ण द्रव्य में दोनों ही शक्तियां, भाववती शक्ति भी है और क्रियावती शक्ति भी है। पंचाध्यायी कार ने यह बात का वर्णन किया है, इसलिए ध्रुवता और अचलता उनकी अनुजीवी पर्याय अनुजीवी गुणों को बताता है, और जो अचलता है वो प्रतिजीवी गुण को बताता है। यानी स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय सब स्वभाव रूप हो गई हैं। अगर अचलता नहीं आएगी तो स्वभाव व्यंजन पर्याय नहीं हो सकती, स्वभाव पर्याय व्यंजन नहीं होगी तो सिद्धत्व दशा नहीं हो सकती। ये दो बातें इसलिए ली। और तीसरी बात अनुपम, अनुपम क्यों कहा? कि जगत में उपमा लायक पदार्थ तो बहुत से हैं, लेकिन हमारे आत्म स्वभाव के लिए उपमा देने लायक जगत में कोई पदार्थ नहीं। जब उपमा लायक ही पदार्थ नहीं है तो हम अपने आत्मा की उपमा देवे किससे? इसलिए हमारा आत्मा तो अनुपम है, उपमा रहित है, अनुपमेय है। इसलिए तीसरा विशेषण हो गया, उसकी उपमा जगत के किसी पदार्थ से नहीं दी जा सकती है, वो आत्मा तो अनुपम है सिद्ध भगवान का। एक चौथी इसमें बात इन्होंने लिखी, देखो आगे लिखा है इस तरह से, विश्रांति बसेन अचलत्वम और उपगताम अखिल उपमान। जगत में जितने उपमान, उपमान कहते हैं जिससे उपमा दी जाए वो पदार्थ कहलाता है उपमान। और उपमा बताने वाला शब्द कहलाता है उपमा वाचक शब्द, और जिसकी उपमा दी गई है वो कहलाता है उपमेय। तो जगत में समस्त जितने भी उपमान हैं, वे उपमान विलक्षण, उन उपमानों से आत्मा विलक्षण है। कैसा है? विलक्षण है, और विलक्षण होने के कारण अद्भुत महात्म्य, अद्भुत महात्म वाला है। ऐसे महात्म वाला होने से अविद्यमान अविद्यमान जहाँ उपमा विद्यमान ही नहीं, इसलिए हम आत्मा को कैसा कहा? अनुपम कहा। फिर आगे लिखा अपवर्ग संज्ञकाम, उसकी संज्ञा क्या है, उसका नाम क्या है, मोक्ष गति का नाम क्या है? अपवर्ग, उसको अपवर्ग भी कहते हैं मोक्ष को, अपवर्ग नगर बोला जाता है मोक्ष के लिए। तो क्यों बोला गया उसको अपवर्ग? कई इसलिए बोला गया कि वर्ग तो चार होते हैं, आयोजन चार पुरुषार्थ होते हैं ना, उनमें तीन की जोड़ी है धर्म अर्थ और काम, इन तीन को त्रिवर्ग कहते हैं, और मोक्ष पुरुषार्थ ऐसा है जो इन जोड़ियों में शामिल नहीं होता, आयोजन में, क्योंकि वो मोक्ष को करने वाला है। मोक्ष पुरुषार्थ किसको करता है? अपवर्ग को दिलाने वाला है, और अपवर्ग को दिलाने वाला होने से मोक्ष पुरुषार्थ के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए उसकी संज्ञा क्या है? मोक्ष की संज्ञा अपवर्ग संज्ञिकाम, उसका नाम अपवर्ग। ऐसी गति आपन नान, ऐसी दशा को प्राप्त होने वाले भगवता सर्व सिद्धान, समस्त सिद्ध भगवान, उन सब सिद्ध भगवंतों को ये अंत में लिखेंगे कि मैं उनको वंदना करता हूँ, नमस्कार। अभी उनको इतना ही ध्यान रखना, एक वाक्य है ये पूरा छह लाइनों का, वन सेंटेंस, समझ में आया ना, और उसका अपन अर्थ कर रहे हैं अपने सामने, आपके सामने अमृत चंद्राचार्य से परिचय करा रहे आपका, है ना। अभी 5 मिनट है भाई, ख्याल रखना, 45 मिनट मैंने देख लिए हैं, बस 5 मिनट और बाकी है। आपका ध्यान वहां न जाए, बिल्कुल निराकुलता से सुनना है। देखो सर्व सिद्धान बेसिद्ध कैसे? सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना, उनका जो सिद्धपना है वो सिद्धपना कारण है। काय का साध्य कौन है? मेरा आत्मा साध्य है। उस आत्मा को साधने के लिए सिद्ध भगवान कैसे हैं? प्रतिच्छन्न स्थानीय, प्रतिच्छन्न स्थानीय माने जैसे मुझे मेरा चेहरा देखना है तो कौन हमें चेहरा दिखाएगा? दर्पण हमें चेहरा दिखाएगा। मेरा चेहरा दर्पण में है कि मेरे में है? तो दर्पण कैसे दिखाएगा कि यही दर्पण का स्वभाव? सिद्ध भगवान में हमारा आत्मा नहीं है, मगर सिद्ध भगवान के आत्मा को देखकर जिसका उपयोग अंतर्मुखी होगा उसे निज आत्मा के दर्शन हुए बिना, इसलिए वे सिद्ध भगवान प्रतिच्छंद के स्थान पर है। प्रतिच्छंद स्थानीय ऐसे सिद्ध भगवंतों को जिनके दशा प्रकट हुई है ध्रुव अचल और अनुपम, और जिन्होंने अपवर्ग गति को प्राप्त किया है, उनको भाव द्रव्य स्तवाभ्याम, भाव स्तवन और द्रव्य स्तवन, भाव स्तुति और द्रव्य स्तुति, वचनों वाली सब स्तुति, ये भाव स्तुति नहीं कहलाती, द्रव्य स्तुति कहलाती, और द्रव्यों के उन शब्दों के निमित्त से होने वाले जो परिणाम है वे भी भाव स्तुति में नहीं जाते क्योंकि अशुद्ध होते। यहाँ तो हमें शुद्ध को भाव कह रहे हैं, तो वो भाव स्तुति तब होगी कि वाणी का विकल्प समाप्त हो जाए, मन के विकल्प समाप्त हो जाए, विकल्प रहे नहीं, निर्विकल्प दशा आए। अरे ज्ञायक का विकल्प ना रहे और ज्ञायक ज्ञायक रूप में अनुभव में आए, उसका नाम है निश्चय स्तुति। तो मैं निश्चय स्तुति से भी सिद्धों की वंदना करूंगा, और व्यवहार माने शब्दों से भी जिनेन्द्र की वंदना करूंगा, और उनके प्रति लगाव वाला जो परिणति है विशुद्ध परिणति, उससे भी मैं उनकी वंदना करूंगा, उन दोनों की वंदना करूंगा। पर वंदना करने के पहले जिनकी वंदना करना उनको वेदी में विराजमान कर लेना। तो स्वात्मनि परात्मनि, अपनी वेदी में और दूसरे की वेदी में, यानी अपने आत्मा में और पर के आत्मा में सिद्धों को स्थापित करके, देखो लिखा ना, निधाय, निधाय माने विराजमान करके, स्थापना करके, अनादि निधन श्रुत प्रकाशितत्वेन, और जो अनादि निधन श्रुत है, अनादि काल से चल रहा जो श्रुत है वो उसके द्वारा प्रकाशित, क्या प्रकाशित हुआ है? निखिल अर्थ, जितने भी जगत के पदार्थ हैं उन सबको जिन वाणी ने प्रकाशित किया है, सार्थ साक्षात्कारी, उन अर्थ को साक्षात्कार करने वाले, अनुभव करने वाले, जानने वाले, ज्यों का त्यों समझने वाले, केवली प्रणीतत्वेन, केवली भगवान है जो सर्व जितने पदार्थ हैं उन सबको साक्षात्कार करते हैं। शब्द डाला साक्षात्कार, साक्षात्कार करना अलग है, अनुभव करना अलग है। अनुभव एक एकत्व में होता है और साक्षात्कार भिन्नत्व में होता है। तो सब पदार्थों का साक्षात्कार तो करते हैं, लेकिन निज आत्मा का साक्षात्कार के साथ तन्मयता से अनुभव भी करते हैं। ऐसे समय प्रकाश साक्षात्कारी प्रणीतत्वेन श्रुत केवली भी स्वयं अनुभवत भी, श्रुत केवली द्वारा ऐसा स्वयं अनुभव करके अभिहितत्वेन उनके द्वारा कहा गया प्रमाणताम उपगतस्य, और जब सर्वज्ञ ने कहा और श्रुत केवली ने कहा तो प्रमाणपने को प्राप्त हुआ है, ऐसा समय का प्रकाशक, समय को प्रकाशित करने वाला प्रावृत नाम का, समय सार प्रावृत नाम का जो अवयव है, काय का अवयव, अरहत प्रवचन, अरहंत के प्रवचन का अवयव है, उस अवयव के द्वारा मैं यहाँ स्वपर का मोह नाश करने के लिए द्रव्य वाचा भाव वाचा, द्रव्य वाणी से भाव वाणी से उसको परिभाषणम उपक्रमते, उसकी व्याख्या करता हूं। ये एकदम जल्दी में कर दिया, विशेष जब लेंगे ना तो वो लाइन को दोबारा लेंगे और फिर से उसका पहले भाव बता देंगे पूरी टीका का और फिर आगे बढ़ेंगे। आइए टाइम होगा।